Hello and welcome to We the People. Discrimination in the name of caste remains the abiding shame of modern India. Where does the fact that even today we hear horror stories of Dalits who are not allowed into places of worship, even in cities we still have in many homes a separate glass for the person who sweeps our home? We've heard even more brutal horror stories, especially sexual violence against Dalit women. Where do all these instances of caste discrimination reconcile with an aspiring contemporary India? The socioeconomic indices also tell their own story of institutionalized marginalization. The most recent socioeconomic survey, for example, says that in rural India, one in every three households lives in poverty, and of these, over a fifth are scheduled castes and scheduled tribes. Yet, despite this overwhelming discrimination, there is now a spate of Dalit entrepreneurs and a new school of thought that argues that if there is one thing that can actually eliminate caste, it is capitalism. Is that really the case? Is capitalism strong enough to actually blunt the impact of caste in modern India? That's what we're here to discuss on We the People today, as Dalits actually come together in a chamber of commerce, and we now hear of Dalit millionaires and billionaires. Is their life actually different from those who have been at the receiving end of social oppression? I'd like to start with Chandrabhan Prasad, because he's in a sense the philosophical mentor of this entire idea. Why do you believe that the power of capital is so immense that it can break down social barriers?
As Mr. Chairman keeps telling...
Chairman, you have to explain to people, chairman of what?
Yeah, chairman of DICCI, Dalit Indian Chambers of Commerce and Industry.
Yes.
That has 4,000 members.
Yes.
And 1,000 members have been studied by Professor Devesh Kapoor of the University of Pennsylvania.
Yes.
And the combined turnover of 1,000 Dalit entrepreneurs is 150 billion rupees. He heads that organization.
Yes.
So there is a conflict between caste and capitalism. Capitalism, the world over, destroyed feudalism. There is no reason.
Well, it actually creates new kinds of feudalism, some would argue.
No, it would create class society. Like India today, what capitalism is doing, it is replacing social markers with material markers.
And you believe, Chandrabhan Prasad, and I just want to frame the debate by now getting Dr. Vivek Kumar in, you actually argue that in the end, the annihilation of caste that Ambedkar dreamt of will come through the route of wealth creation, right?
Well, Barkha, in my childhood, I have seen Dalit women after working the entire day, standing with folded hands before landlords' houses, spreading their anchal for 2 kg of grain. If one amongst them has a son or a daughter who implies a dozen landlord's children, a thousand, Ashok Khare implies 5,000 such workers.
Yeah.
Out of 152 engineers, he has 100 upper caste people. The day a Dalit implies a Thakur as his worker, that is the beginning of a social revolution in India.
Dr. Vivek Kumar, can you disagree with that?
Well, we have to define what is caste. Caste is not an economic institution. Caste is a social institution.
Yes.
And therefore, if we say caste is an artificial partialing of people,
yes,
and people into definite unit, people are not allowed to intermingle and they keep away from each other on the basis of marriage. Please lift off your matrimonial
collars.
Yeah. And not only actually Dalits, Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas. Not only that, caste has traveled from real to virtual. Go to matrimonial sites, websites. You will cite people espousing, actually, you know, asking spouses on the basis of caste, subcaste, and sub-subcaste.
And they come back. So you're saying educated, wealthy people will still look for marriages within the same caste.
No, that is
and therefore, caste is not an economic construct, no, it's a social construct.
That is one aspect.
Although it started off as an occupational construct.
Not at all. Because these occupations are found world over, but they don't translate into caste system. Second aspect of caste is the cultural capital and networks, out of which you make, you know, not only regional, local, but international connections. And out of that you get an aura, that is charisma, and others get stigma. And therefore, Dalit Chambers of Commerce is a statement that caste still exists. Otherwise, DICCI should have got a place in FICCI, not outside the FICCI. So this is a statement, caste exists despite of their affluence.
I will take that to Milind Kamble, who is the chairman of DICCY, the Dalit Indian Chambers of Commerce, in a moment. But first, you spoke, Chandrabhanji, of Dalit women and what they had to go through. And we have the very amazing Kalpana Saroj. Kalpana ji...
Let me say, लोग कहते हैं कि क्या सारी दलित महिलाएं कल्पना हो गई, कल्पना सरोज बन गई? अगर अमेरिका में एक ब्लैक बराक ओबामा प्रेसिडेंट बनते हैं तो ब्लैक्स ऑल ओवर वर्ल्ड क्लैप करते हैं
जी।
तो दलितों में से अगर एक ही कल्पना हमारी अरबपति बनती है,
वो भी बहुत बड़ी बात,
तो हमारी हजारों महिलाओं और करोड़ों महिलाओं के लिए गर्व की बात है।
इनकी कहानी हम सुनना चाहते हैं। बहुत से लोग जानते नहीं कि इनकी लाइफ जर्नी कितनी अमेजिंग रही है। कल्पना जी, 12 साल की उम्र में शादी?
जी हाँ।
आपके फादर थे कांस्टेबल?
जी हाँ।
उन्होंने कोशिश की कि आपकी जबरदस्ती इस उम्र पे शादी ना हो?
जी हाँ।
लेकिन वो प्रेशर नहीं विदस्टैंड कर पाए?
जी हाँ।
तो आप चाइल्ड ब्राइड बन के शादी होती है आपकी, फिर आप वहां रहना नहीं चाहती, आपके साथ किस तरह का बर्ताव होता है द चाइल्ड ब्राइड?
वहां का बर्ताव जो था वो यकीनन बहुत ही बुरा था, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के अपने एक सपने होते हैं शादी के बाद के, जो भी सपने हैं उनके, तो उस तरह का सपना तो खैर छोड़ दीजिए, एक अंडरस्टैंडिंग है कि शादी के बाद में ससुराल जो है, क्योंकि हमें पहले से सिखाया गया था कि लड़कियों की शादी जब होती है तो डोली भले वहां पर जाए लेकिन अर्थी ही बाहर निकले, तो जितने भी जुल्म है, जितने भी जो भी है, वो सारे सहने ही है। तो ये तो बात पहले से बचपन से सिखाई गई थी और हम सह भी रहे थे, लेकिन जब हद से ज्यादा गुजर जाती है, उसके बावजूद भी मैं खुद नहीं गई, मेरे पिताजी जब आए मुझे देखने के लिए, उन्होंने जब देखा कि इतनी बुरी हाल मेरी बेटी के है, तो वो खुद नहीं चाहते थे कि मैं वहां रहूं, और वो खुद मुझे अपने घर मतलब लेकर गए और उन्होंने कहा कि जो भी हो गया भूल जाओ, बुरा सपना समझकर, और आगे आप पढ़ाई जारी।
तो आपकी क्या एज थी जब आपके फादर इन अ सेंस वापस आए एंड ही रेस्क्यूड यू फ्रॉम दैट मैरिज, उन्होंने बचाया आपको उस चाइल्ड मैरिज से?
12-13 साल की, मतलब 12 साल में तो शादी हो गई थी और उसके 6-7 महीने में ही पिताजी आ गए थे। उन्होंने जब देखा मुझे तो पहचान भी नहीं पा रहे थे कि मैं उन्हीं की बेटी हूं करके, इतनी बुरी हालत थी, इसीलिए पिताजी मुझे वापस लेकर गए और फिर उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिला वगैरह दिया। लेकिन कैसे होता है कि जो माहौल बन जाता है, जो सामाजिक हमारी जो परंपरा है, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि एक बेटी ससुराल से जब वापस मैके में चली आती है तो लड़की कितनी बुरी है, ये मतलब समझा जाता है कि लड़की में कितने सारे दोष है, वो ससुराल में रह नहीं सकी, अपने पति का घर संभाल नहीं सकी, मतलब लड़की बुरी है, तो इसी नजरिए को देखा जाता है। ये बिल्कुल नहीं सोचते कि उसको वाकई कुछ जुल्म हुआ होगा या उसके साथ में कोई जाति हुई होगी, इस तरह से नहीं सोचते।
आपने ये भी कहा कि आपकी छोटी बहन बीमार थी और आपके पास पैसे नहीं थे, फैमिली के पास, उनको बचा नहीं पाए, आप उनकी मदद नहीं कर पाए, एंड दैट इज व्हेन यू डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू बी रिच।
मैं एक्चुअली बचपन से चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं कुछ बनूं, बहुत सारा पढ़ लिख कर मुझे आगे बढ़ना था, तो मैं पढ़ नहीं सकी बदनसीबी से। तब फिर क्या करना चाहिए, अगर मेरे पास में एजुकेशन नहीं है तो मुझे सरकारी नौकरी तो मिलनी नहीं है, क्योंकि उस वक्त सरकारी नौकरी के ही ऊपर सारा फोकस होता था। तब मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि नहीं, मुझे कुछ करना है तो क्या करेंगे, तो मेरे लिए एक सिंपल सा था कि मैं टीचिंग सीखूं,
स्टिचिंग, टेलरिंग,
टेलरिंग का सीख लिया, ताकि मैंने उस वक्त सोच लिया था कि अगर मैं एक ब्लाउज बना लूंगी तो 10 रुपया मिल जाएगा, तो दिन में 4-5 ब्लाउज तो मैं बना ही लूंगी, 40-50 रुपया मिल जाएगा। तो मेरे पिताजी महीने में 300 रुपए कमाते हैं, तो मैं तो 1000-1500 कमा लूंगी, तो फिर क्यों ना मैं यही करूं, तो मैंने बचपन से वही स्टार्ट किया।
एंड देन यू स्टार्टेड गेटिंग इनटू फर्नीचर, रियल एस्टेट, और फिर यू नो एंड सो ऑन। आपकी How, what is your worth today?
आज करीबन मैंने कंपनी के 2-2.5 हजार करोड़ की तो मतलब मेरे पास में जो एसेट्स है और काफी अच्छा कुछ मेरे पास।
So you went from a 12-year-old Dalit child bride to many thousand crore to over 2000 crore worth company. That is just an amazing, extraordinary story. And मैं आपके पास वापस आऊंगी हिंदुल, at this point. Chandrabhan would say, there, I've proven my point. But Vivek would say, that's money. That's not social attitude. There will still be people jo Kalpana ke saath bhedbhav karenge.
Here's the big thing that I don't understand and where I differ with Vivek. We've given 67 years to socialism to solve the problem. and we think everything will get solved just because India doesn't even understand capitalism yet, and we are not even willing to give it a chance, and we're being pushed into these two camps. There is no denying that in some places maybe the government has a role, yeah. But we need to embrace that there could be multiple solutions to a complicated problem. And I know I consider Chandrapan Prasad my guru in some senses. He says this magical thing. He says pizza delivery ka koi jaat nahi hota hai. And in that magical moment, and you know, you and I can't understand this, yeah. The moment when this poor boy or girl goes and delivers pizza, and for many generations they have not seen anybody take food from their hand without thinking.
There
and
is an empowerment happens, in that moment.
You know, Adam Smith and Ambedkar magically comes together. You know, that's the magical
okay,
moment.
Okay, one line then, Tushar, and I want to go to all the others also. Yeah.
Jab Kalpana Saroj aur Milind Kamble apne BMW aur Mercedes mein chalte hain, to maine dekha hai, jati vyavastha ke aankhon mein aansu aa jate hain.
Come on, exceptions can't be a trend. Huh. There can be exceptions.
But Vivek, for 67 years we tried the other path. Did it solve the problem?
Capitalism is not going to solve the problem. Because it's not an economic issue.
Okay, let's get Tushar in. Vivek, I'll come back to you. Tushar.
On the way to the studio from the airport, I was in a taxi and I asked the guy what his कास्ट वॉज. ही सेड हम जादव है बिहार के. तो मैंने उसको प्रश्न किया कि अगर कोई जो हल्की जाति के हैं लोग वो करोड़पति बन जाए तो उनकी हल्की जात मिट जाएगी. काउंटर वॉज यादव गरीब हो जाएगा तो क्या उसका खून हल्का हो जाएगा.
No, but I have one counter.
Now, listen to me.
Ambedkar himself believes about socialism in the constitution.
Yeah. Don't talk about socialism.
Ambedkar did not want socialism.
Don't read Ambedkar. Please read Ambedkar properly and then debate.
I didn't interrupt you when you were talking.
He criticized outrightly
capitalism. Okay, Tushar, make your point. I want to ask the best answer how her life
will change. What I'm saying is economic status is a different matter, but what matters is what the guy on the road believes. And as long as that guy on the road believes in a certain thing, that will not go away, whether you become a millionaire or you are a poor person.
Maybe it's a different set of hierarchies, but that class is replacing caste.
No, class isn't replacing caste.
Kalpana ji, aapse puchungi, then I want to come to Milind. Aapse puchungi, jab se aap ek tarah se ameer ban gayi. और मैंने सुना अब आप हेलीकॉप्टर आपकी कंपनी खरीदने वाली है, मुझे किसी ने बताया.
जी हाँ, खरीदने वाली थी मैं, लेकिन अभी फिलहाल नहीं खरीद रही हूँ क्योंकि मैंने उसके बारे में अलग कुछ सोचा है. मैं ये चाहूंगी कि जो स्टूडेंट्स जिनको हम लोग ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं या जर्मनी, मेरा खुद का बेटा पायलट है जो जर्मनी जाकर टाइपराइटर सीख कर आया है, तो हम लोग चाहते हैं कि, और उसके पीछे कम से कम 50-60 लाख रुपया खर्चा आता है, 30 लाख रुपए तो फी ही होती है उसकी. अगर हम यहाँ पे इंडिया में करेंगे तो एक 5-6 लाख में हो जाएगा, तो आम बच्चे जो है वो यहाँ पे पढ़ पाएंगे. तो इसके लिए हेलीकॉप्टर लेने के बजाय मैं ये चाहूंगी कि वो क्लासेस स्टार्ट कर दे.
पर मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जब से आप एक तरह से, आपको अपनी वो जिंदगी याद होगी जब अपनी बहन को बचाने के लिए पैसे नहीं थे, यू वेंट एज अ चाइल्ड ब्राइड, वो थे, टुडे यू आर अ वेरी वेल्दी वुमन. जो जात पात है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो आज भी होता है क्या आपके साथ?
मेरे साथ में भी बहुत कुछ हुआ है, आज भी हो रहा है. ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है, आज भी हो रहा है. लेकिन उसके बावजूद भी मैं फाइट करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बताया है कि हक अगर मांगने से नहीं मिलता है तो छीन के लेने की ताकत भी हमारे इसमें होनी चाहिए, और वो मैं करती हूँ. इसीलिए हर तकलीफ को बड़े आराम से मैं दूर करती हूँ.
ओके, आई थिंक दैट्स, इट्स अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग जर्नी इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू वेन ऑन दिस डिबेट. कल्पना's ओन जर्नी एंड इवन मिलिंद, योर, यू नो, आई रिमेम्बर वंस यू टोल्ड मी, मैं शरद पवार को पानी सप्लाई करता हूँ. You know that there is an equality in that. There is an equality in the assertion. जैसे वही पिज्जा डिलीवरी वाला मेटाफर चंद्रभान जी आपका, बट कल्पना सिंह, अभी भी भेदभाव होता है, अभी भी लोगों का नजरिया इतनी आसानी से नहीं बदलता. मिलन जी,
नहीं, ये तो सच है, हमारा देश जो है एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी है. मगर बरखा जी, मैं आपको बोलता हूँ, हमारा देश बहुत तेजी से बदल रहा है
जी.
तो अभी ये जो कास्ट सिस्टम हमारे देश में जो है, हम 50-60 साल से जो एक सोशलिज्म के साथ, कास्ट के साथ फाइट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है 1990 के बाद वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बदलना चाहिए. और मेरा
आपने एक जगह ये भी कहा था, कैपिटलिज्म एंड कास्ट कैन नॉट
कोएग्जिस्ट. वो एक मेरा इंटरव्यू है, कास्ट एंड कैपिटल कांट कोएग्जिस्ट, वन हैव टू गिव द वे.
ओके. Okay, so very interesting. Now I want to bring in Nagraj Manjule. Nagraj, you're a filmmaker who made a film actually about a young Dalit boy. You said borrowing heavily from your own life. आपने कहा मेरी जिंदगी की एक तरह से एक कहानी है और हम थोड़ी देर में उसका एक क्लिप प्ले करने वाले हैं, पर पहले आप अपनी जिंदगी ग्रोइंग अप एज अ यंग बॉय थोड़ा लोगों को बताइए एज अ दलित बॉय.
देखिए, मैं अभी जो चर्चा में सुन रहा था, मुझे एक बात, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं
जी,
कि आप अमीर हो और आप एक जाति के हो
जी.
जैसे कि मेरे गांव का एक इंसिडेंट है कि एक जो भिखारन थी
जी,
एक लेडी बूढ़ी, वो भीख जहां मांगती थी वो घर चुन के भीख मांगती थी. जो भीख मांग रही है वो औरत दलितों के घर भीख नहीं मांगती थी,
भीख मांगती थी, भीख नहीं मांगती थी, घर नहीं
मांगती, वो दलित का घर छोड़ देती.
इतना डिस्क्रिमिनेशन
है. तो मैं सोचता हूँ ये अमीर होने की बात नहीं है, ये सोच की बात है. जब सोच बदलेगी तो जाति व्यवस्था नष्ट होगी.
पर आपको लगता नहीं कि वन कैन बी द रूट टू द अदर?
देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि दलित मैंने बनाया और फैंड्री की वजह से मैं दुनिया भर में घूमा.
अच्छा, फैंड्री का मतलब बताइए.
फैंड्री का मतलब पिग, उसको कहा जा सकता
पिक,
है क्या? हाँ, सुअर, लेकिन वो गाली भी है.
फैंड्री.
उस दौर जिस मैं अमेरिका गया था, तब वहां के एक दलित युवक ने मुझे पूछा कि अंबेडकर की इज्जत कैसे बढ़ा सकते हैं. तो मुझे ये बात, ये सवाल ही समझ में नहीं आया कि अंबेडकर की इज्जत कैसे बढ़ाई जाए और हम कौन कैसे होते हैं कि हम अंबेडकर की इज्जत बढ़ाएं. लेकिन ये सोचते हैं सब लोग, जैसे कि मैंने मेरी जब शॉर्ट फिल्म फैंड्री के पहले शॉर्ट फिल्म आई थी और मैंने इंटरव्यू में पहली बार कहा कि मैं एक दलित हूं और मैं बाबा साहब अंबेडकर को मानता हूं, हालांकि मैं SC ST की जाति का नहीं हूं, मैं मेरी अलग ही जाति है. और जो सोचते हैं कि अंबेडकर हमारे नहीं है, अंबेडकर सिर्फ महार, जहां महाराष्ट्र में महार जाति में अंबेडकर जन्म में उनके मांग भी समझते हैं कि अंबेडकर हमारे नहीं है. तो मेरे पिताजी भी मुझे वही कहते थे. जब मैंने ये कहना शुरू किया कि मैं एक दलित हूं, मैं अंबेडकर को मानता हूं, तो मुझे बहुत सारे फोन आए मेरे हितचिंतक, मेरे दोस्त और मेरे सगे संबंधी के, कि तू उनका नाम मत ले, अंबेडकर का नाम मत ले, खुद की जाति मत बता, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में तुझे लोग बाहर कर देंगे.
कि अपनी जाति बताने से इंडस्ट्री में ऐसा हुआ? लेकिन
ऐसा नहीं हुआ.
सो therefore देयर इज अ चेंज, वी हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड. वो चेंज अभी हुआ नहीं है, लेकिन उसका प्रोसेस,
लेकिन
उसकी
झलक मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि ये जो सोचते नहीं है, जो जाति मानते नहीं है, ये सोच की बात है. आप अमीर हो, गरीब हो, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो,
यू आर सेइंग कि वेल्थ जो डिस्क्रिमिनेट करेगा वो तब भी
करेगा.
अच्छा, आई वांट टू जस्ट सी अ क्लिप फ्रॉम फैंड्री, दिस यंग दलित बॉय, एंड इट्स अबाउट अ कम्युनिटी ऑफ पिग कैचर्स एंड पीपल हु ईट पिग मीट एज वेल, व्हिच इज कंसीडर्ड द लोएस्ट ऑफ द लो इन दिस विलेज. जस्ट अ स्मॉल क्लिप फ्रॉम द मूवी फैंड्री.
చాలు లావడలు గారు, వాళ్ళ చిమ్ని కాపాజిల్లాగా.
అరే చిమ్ని బామ్ని నస్తి తిలా శివుల కి బాకీ చిమ్ని కల్పాత గెట్ నై తిలా తో జమా అరుణ్ అరుణ్ జూ గెత్త తిజా.
नागराज, आप जरा समझाइए उसमें, बिकॉज एवरीवन कुड अंडरस्टैंड फॉलो द लैंग्वेज. दैट वुमन, वो जो थोड़ी सी एल्डरली वुमन है, वो कह रही है वो दैट बर्ड इज लाइक अ ब्राह्मिन.
ये हम, हमारी जाति व्यवस्था की जड़ें इतनी जटिल है
जी,
कि हम यहाँ के पक्षियों में, प्राणियों पे भी हम जाति आरोपित करते हैं. और मेरे गांव में मैं बचपन से, ये चिड़िया जो है, ब्लैक ड्रोंगो जो है, इसको पकड़ के अगर इसकी राख, इसको मार के अगर इसकी राख किसी लड़की के सर के ऊपर डाल दो तो वह सम्मोहित होती है, वो आपसे प्यार करने लगती है. ऐसी एक धारणा है जो कि झूठ है, मतलब धारणा ही है.
सो दैट इज द एक्सटेंट ऑफ हाउ इंट्रेंच्ड इट इज. सो आई वांट क्विक रिएक्शन. हिंदुल, यू हर्ड व्हाट कल्पना सेड. कल्पना ने बोला अभी भी होता है, ये नहीं दैट इट्स गॉन. डज दैट डिसप्रूव चंद्रभान्स थ्योरी और योर थ्योरी?
No, it doesn't. And I'll give you two quick examples. I was looking at the people who sponsored or who bankrolled his film.
Yes.
And some of the names I saw them were capitalistic companies. That's one. And also in Kalpanaji's own life, which I wrote a part of my book is about, you ask her, you know, the caste of the man her daughter married, and you will see the transformation that has happened. And look, we have to understand, we're just at the beginning of the curve, since we're talking about economics. Capitalism is not a magical pill that will go in and solve all the problems.
Yeah.
We're in the beginning of the curve, and it's a journey, but more things are possible with capitalism today than with any other form of socialism.
Tushar, would you agree with that at least?
I think it raises the financial status. You know, you look at Mayawati. She became the most powerful lady in Uttar Pradesh, and yet she had to battle gender prejudice, she had to battle caste prejudice. That didn't go away. People would not commit atrocities against her because she had the power. The same with her, you know, with her money, it insulates her from atrocities. But the prejudices that are the silent prejudices...
But doesn't it also provide her some mobility, social mobility? Bhi to hota hai. Paise se social mobility bhi hota hai, sir,
Barkha,
economic mobility
Barkha,
nahi hota.
See, what I'm saying is that finance is fine. But if after being a millionaire, somebody who doesn't want your millions will turn around and say, khoon to halka hi hai, the stigma still remains.
Kalpana ji, aap iska jawab dijiye ki jaise Hindol ne baat kiya ki ek mobility hota hai, ek badlav aata hai, paise ke saath aata hai, ek taakat aati hai. Aapko lagta hai ki ek taakat aayi hai?
Ji haan, paison ke saath mein taakat to khair aati hi hai. Kyunki jis tarah se, agar aapke paas paisa nahi hai, us insaan ke saath mein jo bartav hota hai, वो पैसे वालों के साथ में उतना नहीं होता है लेकिन होता है अगर
so, कम होता है लेकिन उतना नहीं
उतना नहीं
बरखा व्हाट आई सजेस्ट यू हैव टू पुट अ मार्कर फ्रॉम वेयर वी आर मेजरिंग दिस चेंज आर वी स्टिल इन 18th एंड यू नो अर्ली 19th सेंचुरी व्हेन पीपल वर नॉट टच्ड पीपल वर एक्चुअली ब्लॉक्ड वी आर टॉकिंग अ वेरी डिफरेंट 21st सेंचुरी वेयर अ डिस्क्रिमिनेशन एंड पीपल व्हाट मोबिलिटी हैज गिवन आवर कॉन्स्टिट्यूशन Rights in the constitution. Mayawati became Mayawati not because of money. She had power of one vote. And therefore, she could do much more.
Okay, Chandraman, quick response and then I want to go into the audience now, please.
Those people who are sitting suits with her, they would not have existed had Baba Sahib not given our constitution.
But Baba Sahib was always in a suit boot, by the way. Baba Sahib was always in his blue suit.
He was not wearing by choice. It was basically a life which he lived in Colombia. He never got photographed in his private moments. He was only photographed
but
in
sir,
formal moments.
But sir, symbology is important.
No, he never.
Okay, Chandravan. Okay, Vivek ji, I want to hear.
Baba Saheb Ambedkar ne Vedon ko reject kiya, Ramayan ko kiya, Mahabharata ko.
And capitalism also.
But jalaya.
He rejected capitalism also.
Listen, please. Allow me to say. Unhone keval manusmriti ko jalaya. Dalit ko वेल्थ बनाने का अधिकार नहीं है साफ साफ लिखा मनुस्मृति में दलित को गोल्डन ज्वेलरी पहनने का अधिकार नहीं है दलित को नया कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है और जो फोटो दिखा रही हैं आप एक दलित दूल्हे ने घोड़े की सवारी कर ली दो महीने पहले
वो यहाँ बैठे हैं पवन जी अपना हाथ उठाइए पवन मालविया है और आपके भाई भी आए हैं आपके साथ आपका नाम क्या है
जीवन राठ
दे हैव कम फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड व्हेन पवन गॉट मैरिड He wanted to sit on a ghoda, as grooms do, and pass through a village. And the so-called upper caste villagers objected. They stoned him. He said, no, I'm going to do it. It is my adhikar. He wore a helmet and he sat on that ghoda and he passed through that village. And now I'm going to say...
Barkha, before you speak, and that right was given by the Constitution of India, not because
and
of
my
money.
Point is that this story can be read in two ways. It can be read as a statement of assertion or it can be read as a statement of continuing discrimination and it is both. Let us not oversimplify it. It is both. Pavan ji, ye aap jo helmet pehen ke ghode pe chadh gaye, ye aapke family ke liye is ghode pe chadhna kyun important tha? Kyunki log aapko bahut pareshan kar rahe the. Wo keh rahe the hum patthar marenge, aap yahan se na guzriye.
Wahan pe patthar mar rahe the, isliye helmet pehen ke ghode pe baithna pada tha.
Par aapne socha kabhi, chalo main ghode pe nahi baithta, main itna pathrav kar rahe hain, aap logon ne socha?
Ji, hum sochna kya, usme apne ko rule todna hai wahan ka, to apne ko nikalna hi tha.
Aapki family ne kaise react kiya jab is tarah ki dhamki aa rahi?
Dhamki to bahut di. पर फिर भी रिएक्ट करा कैसे भी करके उनसे निकाल
क्यों जरूरी था आप लोगों के लिए एक तरह से इज्जत की बात थी क्या था?
मतलब वहाँ हमारे गांव से ही दो तीन बार गए तो दो तीन बार बारात गई दो तीन जने की तो मार मार के भगाया सब
बारात को वापस आना
नहीं आना तो नहीं पड़ा पर वहाँ जुलूस नहीं निकालने दिया
अच्छा, तो, मतलब प्रोसेशन
नहीं निकालने दी तो फिर हमने पहले से सारी ये प्रक्रिया तैयार करके पुलिस वुलिस में इन्फॉर्मेशन दे के फिर पुलिस की सहायता से जुलूस निकालने का सोचा
तो आपको गुस्सा नहीं आया कि आज के भारत में भी ये देखिए मेरी जाति की वजह से मेरे साथ इस तरह से बर्ताव किया जा रहा
है? मैम गुस्सा के क्या करना है, गुस्से में क्या कर सकते हैं, अपन कर भी तो नहीं सकते हैं। वहाँ पे पुलिस वाले सब थे, वो कह रहे हम संभाल रहे, तो आप क्यों उठा रहे हो कुछ भी?
डर लगा
जी मैम, डर तो मैं बहुत ही डरता हूँ। उन्होंने पहले धमकियां दी, नहीं दूल्हे को काट देंगे, घोड़ी को काट देंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, चले तो सही।
चार घोड़ियां तो भगा दी थी,
चार घोड़ियां तो भगा दी।
और ये आपके लिए क्यों जरूरी था? मतलब पहले जमाने में ऐसा भी हो सकता था कि भाई घोड़े पे बैठना एक माना जाता था कि ये सिर्फ अपर कास्ट वाले जो ऊंची जाति के लोग हैं वो कर सकते हैं। अब भारत आपको लगता है आपकी जाति के लिए कितना बदला है और कितना नहीं?
भेदभाव तो हमारे गांव में तो नहीं होता,
बाकी लोगों से जहां से आपने ये जलूस निकाला वहां तो था ना भेदभाव?
वहां पे तो था भेदभाव, उधर दुल्हन वालों को भी बहुत डराया धमकाया, बहुत ही नुकसान करा, पूरा डीजे वीजे सब टूट गया था, इतने पत्थर बरसाए, उन्होंने दूल्हे को बैलगाड़ी के नीचे छुपाया, हमने
बैलगाड़ी के नीचे,
हाँ बैलगाड़ी के नीचे छुपाया, ऊपर से तो पत्थर आ रहे।
तो जो लोग कहते हैं आजकल जाति का उतना असर नहीं होता, आप लोग मानेंगे?
होता है मैडम, गांव में तो होता है,
कहीं कहीं पे होता है मैडम, और बाकी कहीं कहीं पे।
पीछे से आपको सुन रही थी, आपने कहा जाति का बहुत असर होता है, आप किस तरह से असर होता है आज?
मैम ऐसा असर होता है, अगर अभी भी मैं किसी को बता दूं कि मैं एससी हूं तो मेरे साथ ऐसा भेदभाव होता है जैसे कि वो एकदम इग्नोर करने लगते हैं। पहले से जैसे मेरे साथ, मेरा नाम जो है सुनीता चौहान है, लेकिन चौहान का सोच के लगते हैं कि अरे नहीं चौहान है ये तो एससी नहीं है। तो वो बहुत लोगों से मुझे सुनने को मिलता है एससी ऐसे होते हैं, इनको क्यों आरक्षण मिलता है, इनको क्यों ऐसा मिलता है, बहुत सारे मेरे सामने बोल देते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि मैं एससी हूं तो फिर वो इग्नोर करने लगते हैं।
और आपको लगता है कि जो यहां डिबेट चल रही है कि पैसा होता तो अलग होता,
पैसे की ऐसी अहमियत होती है कि पैसा तो इंसान नाली में से भी उठा लेता है और पैसा जाति नहीं देखता।
बरखा जी लेट मी कंप्लीट, हां लेट मी कंप्लीट। जब इन्होंने घोड़े की सवारी किया और तलवार लिया तब गांव वालों ने पत्थर मारे, अगर ये बैलगाड़ी पर बैठ के आते या दूल्हे पैदल होके आते तो इनको कोई अपोज नहीं करता। दलित साइकिल पर जा रहा है उसका कोई अपोज नहीं करेगा, दलित बगैर कपड़े के लोग बोलेंगे ये कितना मजेदार दलित है। जब दलित राइज करता है, बिल्डिंग बनाता है, बंगले बनाता है, गाड़ी में चढ़ता है, पैसे बनाता है, तब दलित लोगों की आंखों में खटकता है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि मेरा जो दलित है,
यही तो मैं कह रहा हूं कि जब पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता।
थिंग्स दैट माय जनरेशन सीज, आई थिंक द ओल्डर इंडिया ऑलवेज सॉ द कास्ट प्रॉब्लम, द ओनली ऑथेंटिक दलित वाज द पुअर दलित। And that's
not
the
at
problem.
All.
That's,
not at
because
all.
That's the narrative.
Not at all.
That's the narrative.
Not at all.
No.
Not
exactly.
At all.
That's
not
why.
At all.
But that's
not
why. That's why those examples are important.
This is oversimplification of the thing. Just because desperately he wants to say that capitalism can become a leveler, he's talking about it. The fact remains that as long as people are prejudiced by caste or gender, capitalism will be neglect, you know, the caste will be neglected when I want the capital from her. I want a loan from her, I'll go and butter her up and do everything. Okay. But if I don't need anything from her, I may not, I will not, I may, if I don't
need anything, you ask her the caste of the man who married her,
I may not have.
Okay, Kalpana ji, baat ho rahi hai ki aapki beti ki jo shaadi hui, it was, I assume, in what is called, I hate this word upper caste, but ek social mobility aayi aapki zindagi mein, aapki beti ki zindagi mein.
Meri beti ki shaadi Brahmin se hui.
कितनी बेटियों की शादी ब्राह्मण से?
अब मैं क्या कहता हूं, जब वो जाएगा तो क्या वो आदमी अपने घर में अपने परिवार में उसी तरह स्वीकार किया जाएगा जिस तरह वो
शादी तो पता नहीं है ना, आप पूछिए उनसे स्वीकार हुआ कि नहीं,
उनसे भी पूछिए ना, मैं भी ऐसे नहीं
पूछिए, मैरिज की है आप पूछिए तो नहीं, आप तो अज्यूम कर रहे हैं कि नहीं एक्सेप्ट होता,
केवल आप ही थोड़े जानते हैं भाई, आप भी जानते हैं।
अरे मैंने बहुत अच्छे से मेरी बेटी को संभाला जाता है, यहाँ तक कि मेरा दामाद वो आया हुआ है बाहर।
कहाँ है?
बाहर
है। अरे
आशीष देशपांडे, उनका
आशीष देशपांडे, अगर आप यहाँ है प्लीज सेट पे आइए।
तो मेरी बेटी की जो शादी हुई उसके सास ससुर बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे घर आते हैं, हमारे घर में खाना पीना भी खाते हैं, ये नहीं कि भाई चलो ये दलित है तो नहीं खाना चाहिए, पूरा मतलब सिस्टम से आते हैं।
और होनी है, मतलब ये बात मैं डिसएग्री करता हूँ, ये इसको हम बहुत बड़ा चढ़ा के बहुत खुश हो रहे हैं जल्दी,
हाँ।
ये हो रहा है, ये हाँ। तो होना ही चाहिए था, ये बहुत कई साल, मतलब हजार साल पहले होना चाहिए था जो आज हो रहा है,
क्वेश्चन बिकम्स कल्पना, इफ यू वर नॉट रिच, अगर आपके पास ये वेल्थ नहीं होती, वुड योर डॉटर हैव बीन एबल टू मैरी अ ब्राह्मण?
नहीं,
सीधा सा सवाल है। उनको तो जवाब दे दीजिए अपनी जिंदगी के बारे
में। इसमें बोलना चाहूंगा कि देखिए, प्यार कई बार ज्यादा लेवलर होता है वेल्थ से।
प्यार इज अ ग्रेटर लेवल,
प्यार इज अ ग्रेटर लेवल। अगर प्यार सच में है तो वो जाती है।
इनका मान लीजिएगा तो ऐसी बात हो गई कि जो इनके दामाद है तो उन्होंने इनकी मतलब वेल्थ देख के शादी की, ऐसा होगा इनका जो कहना है? नहीं, बिल्कुल आप जिस तरीके से कह रहे हैं ये होगा।
द पॉइंट इज नॉट टू ओवर सिंप्लीफाइड, द पॉइंट इज वेल्थ ब्रिंग्स अ सर्टेन मोबिलिटी व्हिच इज अनडिनाइड।
अलग बात है,
यस ऑफ कोर्स देयर कुड बी रेयर इंस्टेंसेस वेयर यू नो पीपल गो अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ
योर मोबिलिटी स्टार्ट्स ऑन 18th सेंचुरी व्हेन डायनासोर अलाउड नॉट योर मोबिलिटी स्टार्ट्स ऑन
विवेक जी, विवेक जी यू,
अरे सर 67 इयर्स तो हमने कोशिश किया, कुछ
मैट्रिमोनियल साइट और मैरिज ब्यूरो?
नो, इट्स अ मैरिज ब्यूरो।
नाउ द पॉइंट इज यू हैव सीन कल्पना स्टोरी वेयर हर डॉटर बॉर्न अ दलित मैरिड टू अ ब्राह्मण। आजकल क्या ये होता है?
मैं पूछना चाहूंगी कल्पना जी से, क्या उनका जवाई भी उन्हीं के लेवल के 2-4 हजार करोड़ के लेवल से आते हैं, ब्राह्मण फैमिली से?
मैं समझती हूँ वो खुद आए हुए हैं यहाँ पर, अगर उनसे बात हुई और उनको भी ये सारे सवाल पूछे कि भाई मेरे पास प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से क्या मेरी बेटी से शादी की, तो वो खुद ही शायद जवाब दे देंगे।
ये नहीं है, अगर दोनों फैमिली टुगेदर सिमिलर लेवल के होते हैं, वो दलित में और ब्राह्मण में फैमिली में शादी नहीं करेंगे, अगर वो सिमिलर स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस है।
व्हाट अबाउट लव?
आपकी बेटी का लव मैरिज या अरेंज मैरिज है?
एक ही स्कूल में पढ़ते थे दोनों भी। 12th में जब वो चले गए तो लड़की को मुझे लंदन भेजना था, तो उसी के माँ बाप मेरे बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आए कि आप हमें, आपकी बेटी हमें पसंद है, मेरा बेटा भी पसंद करता है, तो लंदन भेजने से पहले इनकी शादी करवा दी जाए, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत बीमार थी और वो चाहती थी कि उसके मरने से पहले शादी देखे। हाँ। तो वो शादी उस
वक्त प्यार तो हुआ ही था
शायद। नहीं,
ओके, वन मिनट, एज वी वेट टू मीट कल्पना सन इन लॉ, यू हैव अ पॉइंट।
कैन वी प्लीज स्टॉप फॉर अ मिनट एंड रिफ्लेक्ट व्हाट हैपेंस आफ्टर कैपिटलिज्म? इकोनॉमिक इक्वालिटी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। 1% ऑफ यूएस पॉपुलेशन कंट्रोल्स 95% ऑफ यूएस वेल्थ। यू आर लविंग कैपिटलिज्म एज इफ इट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन टू एवरीथिंग। कैन वी स्टॉप रनिंग आफ्टर मनी बींग द ओनली सोल्यूशन टू एवरीथिंग? एंड यू विल हैव टू हैव द गवर्नमेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन एलिमिनेटिंग दिस, व्हिच इज व्हाई वी हैव सोशलिज्म इन दिस कंट्री।
मिलन जी, कि कैपिटलिज्म के साथ भी इनइक्वालिटी आती है, हाउ कैन कैपिटलिज्म बी व्हाट स्टॉप्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, आप क्या बोलेंगे?
कल एक इंग्लिश मैगजीन के इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया था और मेरा फोटो सेशन जो है, गौतम राजाध्यक्ष जो थे, ही वॉज द ग्रेट फोटोग्राफर, उनके यहाँ हुआ
जी।
और मुझे वो जो मेकअप मैन है वो बता रहा था, इस कुर्सी पर अंबानी बैठे हैं, टाटा बैठे हैं और आप बैठे हैं। ये चेंज जो है ये ड्यू टू इकोनॉमी की वजह से ये चेंज है और ये हो रहा है
जी।
मैं आपको बोलता हूँ, हमारे देश का जो दलित इंटेलिजेंसिया है, ही इज कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड। आज का जो दलित यूथ है उसके एस्पिरेशंस क्या है उसको पता ही नहीं है। ही इज स्टिल लिविंग इन 1950s और वो वही दिलीप कुमार के जो गाने हैं वो गा रहा है, मेरी दुनिया उजड़ गई वाले।
एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज वी हैव टू ब्रदर्स हियर एंड दे हैव एन अमेजिंग स्टोरी, बट फर्स्ट वी बीन स्पीकिंग सो मच अबाउट कल्पनाज डॉटर्स मैरिज, नाउ वी हैव हियर द बॉय दैट शी एक्चुअली मैरिड। व्हाट्स योर नेम?
आशीष।
ये जो कास्ट की बात है, डिड इट मैटर एट ऑल टू यू?
नो, एंड व्हाई शुड इट बी? देयर शुड बी सम रीजन टू मैटर, राइट? आई लव Seema, and Seema loves me. It's
love.
Okay.
Not because love. Of Barka, but
love,
because
not bank balance.
What do you want?
Love. Barka, see, Barka, love, not bank balance.
He's
only
say.
Nobody is saying it's bank balance.
Love. Yeah, it's mean, not you know, bank it balance. It's like love.
That, I mean. यहाँ पे the debate is that if Kalpana's family was not wealthy, तो क्या ऐसा कभी होता आज के भारत में भी कि एक दलित लड़की एक ब्राह्मण लड़के से शादी कर?
होता? क्यों नहीं होता?
होता है ये।
आई मीन सी द वन थिंग इज दैट इन इंडिया हम लोग उसको बहुत ज्यादा बड़ा कर रहा है. Why are we comparing a Dalit, a Brahmin? Why can't two human beings sit together? They want to marry or whatever the reasons may be. If he is rich, poor.
What was your view? Just love.
Yeah.
चंद्रमान प्रसाद, आर यू रिड्यूसिंग अ लव स्टोरी टू अ सोशियोलॉजिकल थीसिस?
मुझे लग रहा है कि तुषार साहब को कहीं न कहीं दलित के बैंक बैलेंस से हल्का हल्का कुछ कष्ट हो रहा है.
किसको? तुषार जी को?
बिल्कुल कष्ट नहीं हो रहा है. मैं तो यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ,
व्हाई इज क्लास डिस्क्रिमिनेशन बेटर और मोर डिजायरेबल देन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन? ये भी एक सवाल है.
हमने सांगली में लोहवंडे साहब हैं, उनके पास 250 औरतें काम करती हैं, वो कार्टन ग्लव्स बनाते हैं और जापान को एक्सपोर्ट करते हैं. उनके यहाँ 20 जैन लेडीज काम करती हैं. एक जैन लेडी का इंटरव्यू किया हमने कि आप एक महार के यहाँ नौकरी करती हैं, आप जैन हैं, तो क्या इसमें कुछ कन्फ्लिक्ट तकलीफ नहीं है? उसने कहा, साहब आज रुपया जाति से बड़ा हो गया है.
सांगली में एक लड़की बैठ करके बनाती है, वो पैसे को मानती है, लेकिन जब मायावती चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो उनकी जात का इश्तहार दिया जाता है. जब जाते हैं जगजीवन राम अनवेल करने स्टैचू, तो उसको गंगा जल से नहलाया जाता है. जब जिसे कहना चाहिए आपके प्रेसिडेंट इंडिया बनते हैं, तो उसको कहा जाता फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट इन द प्रेसिडेंट हाउस.
बट यू कॉल बराक ओबामा द फर्स्ट
बड़ी माउथ.
अरे अरे विवेक जी का मान है, डोंट गेट सो एंग्री.
एवरी टाइम
नो नीड टू गेट सो पर्सनल. ही हैज अ राइट टू हिज व्यू.
ही इज आंसरिंग एवरीथिंग.
नो बट ही हैज अ राइट टू हिज व्यू. इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म. प्लीज आई हैव टू मूव ऑन. आई हैव टू मूव ऑन. देयर इज नो नीड टू गेट सो एंग्री. वी आर हैविंग अ कन्वर्सेशन नाउ. लेट्स हियर द स्टोरी ऑफ राजू एंड ब्रजेश. लेट्स एवरीबॉडी काम डाउन. आप इसे राजू और ब्रजेश कौन है पहले बताइए?
ब्रजेश मैं हूं, राजू.
अच्छा, आपके फैमिली में आपके पिताजी क्या करते हैं?
मजदूरी करते हैं.
मजदूरी करते हैं. सन्स ऑफ डेली वेज लेबरर्स. एंड बोथ ऑफ यू क्लियर्ड. आपने आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम अभी क्लियर किया. अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब ये क्लियर हुआ और ये न्यूज फैल गई, तो क्या ये सच है कि आपके घर पे पथराव हुआ?
हाँ, ये एकदम सच है कि मेरे घर पथराव हुआ. हजारों लोगों के लिए, हम दोनों भाई गाँव के लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने. लोग इंस्पायर्ड हुए. बच्चे जो गार्बेज में अपना फ्यूचर ढूंढ रहे थे, उनके हाथ में नोटबुक और पेन आ गई. लेकिन वो लोग जो सामंतवादी, जो कंजर्वेटिव आइडियाज के हैं, उन लोगों को ये बात रास नहीं आई.
पर इन्होंने पत्थर क्यों मारे? आपकी तो बहुत अच्छी कहानी थी, आपने पढ़ लिख के आईआईटी क्लियर किया, क्यों मारे पत्थर?
जब हम दोनों भाई वहां से आए मुख्यमंत्री आवास से सम्मानित होकर, तो हम सोचे कि गांव में जाऊंगा तो स्वागत होगा. मेरा स्वागत इसलिए होगा कि पूरे गांव को समग्र लोहिया ग्राम के तहत विकास किया जाएगा, मुख्यमंत्री ने घोषित किया. हम वापस आए वहां से घर पे, तो हम लोग का स्वागत के बजाय पत्थर मारे गए. भले गांव के लिए ही विकास कर रहे हैं, लेकिन अगर जब वो जो मानसिकता है उनकी अभी भी वही है कि जातिवाद अभी भी गांव में है.
ये जातिवादी है कि जेलसी है उन लोग के? मतलब उन लोग आईआईटी में नहीं एडमिशन मिला, आप लोग को मिल गया, कि दोनों ही?
मेरे ख्याल से दोनों, क्योंकि मेरे गांव 500 घर हैं, उसमें कोई भी सरकारी जॉब नहीं करता है.
एग्जैक्टली दैट.
आपके सपने क्या? एक मिनट, आप दोनों के सपने क्या? चलो पथराव मारे, फिर भी आप नेशनल हीरोज बने एक तरह से, पूरा इंडिया अब आपको जानता है.
इंडिया जानता है. और मतलब कि जो गांव का विकास हुआ, तो जब हम दोनों भाई छोटे थे तो देखते थे कि मतलब कि गांव में जो जातिवाद है और जो गरीब हैं, उन लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है. एक वाक्य मैं बताता हूं आपको. मैं इलाहाबाद से आ रहा था घर, तो बस में बैठा तो कंडक्टर ने पूछा कि देखा हुलिया देखा मेरा, तो सोचा किसी मतलब कि अपर कास्ट का, तो पूछा कि पिताजी क्या करते हैं? बोले मजदूरी करते हैं सूरत में. कितना कमा लेते हैं? तो हम बोले कि 12,000. तो
12,000?
हाँ, 12,000. तो पूछा कि क्या बिरादरी है? तो मैं बोला कि सरोज. तो उसने सरोज का मतलब नहीं समझा. तो मैं बोला कि दलित. तो उसके मतलब बोलने का और मेरे साथ बर्ताव करने का नजरिया ही एकदम टोन बदल गया बात करने का.
पर आपको लगता है कि अब आप आईआईटी में आ गए हैं, पहले पैसों की भी प्रॉब्लम थी, अब वो भी शायद सॉल्व हो गई है?
हाँ, पैसे की बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन हम एनजीओ से एक मतलब कि उसमें पढ़े, तो पैसे की प्रॉब्लम उस समय नहीं आई. राशन कार्ड से मतलब कि चलता था घर का खर्च, और पिताजी जो करते थे, और भैया एमएससी में है, तो बच्चों को ट्यूशन देते थे, उससे मतलब कि हम दोनों भाई का और
पांच भाई एक बहन का खर्च चलता
पर अब आपको लगता है कि आईआईटी में पढ़ के आप दोनों की जिंदगियां इस हद तक बदल सकती हैं कि ये जो भेदभाव है वो खत्म हो सकता है?
हाँ, हमको मतलब कोशिश तो पूरा करेंगे कि भेदभाव को मिटाएं।
क्या सपना है आपका?
मेरा सपना है कि बीटेक करने के बाद एमबीए करूंगा, उसके बाद पैसे कमाऊंगा और गांव के जो विकास के लिए जो हो सकेगा मैं पूरी दम से अपने।
और अपने लिए सपना भेदभाव जो होता है,
मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर जब समाज पूरा शिक्षित हो जाएगा तो भेदभाव खुद में खुद मिट जाएगा।
अभी शुरू से भी हम जो बात कर रहे हैं ना, मुझे लग रहा है बहुत अटपटी और दोनों दिशाओं में बात कर रहे हैं। ये दो बहुत अलग बातें हैं। मैं चाहता हूं कि भारत का हर एक दलित अमीर बन जाए, हाँ ये अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जाति व्यवस्था नष्ट हो गई। जाति व्यवस्था नष्ट करना एक अलग बात है, अमीर बनना एक अलग बात है। कहीं ऐसा ना हो कि सारे दलित अमीर बन के जो सवर्ण लोग हैं उनको दलित बना दे। तो ये बात ऐसी नहीं है कि सिर्फ अमीर बनना, पावर में आना, ये बात नहीं है। हम एक दूसरे से प्यार करना सीखना चाहिए। जो भी दलित है, जो पीड़ित है, अभी महिला की बात लीजिएगा, अगर स्त्री सत्ता दुनिया बन जाएगी तो पुरुष गुलाम बन जाएंगे, फिर पुरुष घर के काम करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। तो कोई भी पावर
करने में क्या प्रॉब्लम है?
नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, ये सोच है ना कि घर के काम करना चाहिए औरत ने, ये सोच वैसे ही अगर रिवर्स हो जाए।
क्वेश्चन अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन इन क्लास एंड कास्ट।
यस,
द बिग डिफरेंस इज इफ देयर आर क्लास डिस्क्रिमिनेशन, इन मोस्ट केसेस यू कैन परचेस एंड देयर इज अ मोबिलिटी ऑफ परचेसिंग पावर। In class, you can purchase a mobility. In
okay, Tushar.
No. This whole sham of capitalism being the cure-all of everything is nothing but a sham. And that's why it has to be shouted and voices suppressed so that nobody can
but if you suppress
speak against
fascism,
it. Caste systems in our society are deeply ingrained, and I'm not jealous of Dalit bank accounts. I'm not jealous of rich Dalit people. I'm not even jealous that I am a failed politician and Mayawati became a chief minister. I am classless and bank balanceless. So I, you know, even in cases where the caste barriers have been broken, they have been broken more for love and respect than by mere wealth.
Okay, can we just get a last comment here and then we'll take final conclusion. Maya, we haven't spoken about manual scavenging. It's been sought to be banned so often. Lekin Indian Railways maybe abhi, because all toilets are not flushable, wo abhi tak chalta hai. Basically, we are still in this country. People are still carrying our shit. There is no other polite way to put it. Maya, aap bahut saalon tak ye kaam karti thi. To kis tarah ka logon ka bartav rehta tha?
जब हम कभी जाते थे तो बाजी जंगा दरवाजा भी खुद में अपने हाथ से खोलते थे, और जैसे हम चप्पल पहन के जाते थे ना तो चप्पल लैट्रिन में जाने से पहले भी हमारी चप्पलें निकलवा देते थे कि चप्पल पहन के भी लैट्रिन में मत जाओ। तो इसलिए हम सोचते थे कि हम क्यों हैं इस जिंदगी में। मैंने कई बार ये सोचा है कि क्या तो मैं अपने आप को आत्महत्या कर लूं या मर जाऊं, कल मेरे बच्चे बड़े होंगे क्या तुम्हें भी इस जल्लत को जाए। फिर भी मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कोई नहीं, देखते हैं, बस जब हमारे समाज में करते ही हैं, कोई मजबूरी समझता है अपनी। फिर भी मैं जानती हूँ कि अभी भेदभाव जरूर है, और अगर मेरे बच्चे अभी बड़े हैं 18-19 साल के 20 साल के, अगर वे किस काम के लिए कहीं जाते हैं तो उनसे पहले जाति पूछी जाती है। तो बच्चे ये कहते हैं कि मम्मी ये बताओ जाति क्यों पूछी जाती है, और अगर हम जाति बता देते हैं तो उस दौरान में कह देते हैं कि यहाँ पर काम नहीं है।
और आप कह रहे हैं कि जब आपको ये मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करना पड़ता था तो आपको लगता था मेरी जिंदगी में कुछ
नहीं है,
फिर भी आप करती गई।
करती इसलिए थी कि बच्चे छोटे छोटे थे, पति बेरोजगार थे, तो इसलिए मजबूरी करना पड़ता। अब आज के जमाने में अगर पति
कितने साल किया ये काम आपने?
मैंने कम से कम 15 साल किया।
लेकिन ये तो ऐसा काम है कि लोग मतलब जैसे अपने का बाथरूम में भी चप्पल उतार के।
हाँ, एक घर अब भी ख्याल ऐसा है
जहाँ क्या करते
कि अगर हम महीने में उनसे पैसे भी लेते थे ना तो पैसे वो जमीन पर रखते थे, तो हम जमीन पर से पैसे उठाते थे। तो ये तो हम सोचते थे कि पैसा यही पैसा हमारे हाथ लग के दूसरी जगह भी जाता है। बल्कि मैंने कई बार उनको ये जवाब दिया है कि जो ये पैसा आप जमीन पर रख रहे हो और मैं इसको उठा रही हूँ, कल को यही पैसा क्या तो मैं ये यूज करूंगी तो ये पैसा आपके हाथ में बिताया। अब ये बताओ इसमें कैसे पता चलेगा कि ये मेरा हाथ लगा है या किसी और का हाथ लगा है?
बिल्कुल बिल्कुल।
तो मैं जानती हूँ कि अगर ऐसी बात है तो उनके ऊपर अभी कार्रवाई होनी चाहिए.
बिल्कुल बिल्कुल. In 2005, I mean, it is so disgustingly shameful, Chandrabhanji, that even I am sometimes wonder कि कैसे कुछ बदलेगा.
जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हो गई है, लेकिन पिछले 50 साल में तुलना करें तो जाति व्यवस्था कमजोर हुई है. और आनर किलिंग 50 साल पहले नहीं होती थी, आनर किलिंग आज होती है. मोहब्बत दलित और गैर दलित में आज ज्यादा हो रही है, पहले नहीं होती थी. और सर आपसे एक मेरा आखिरी निवेदन.
डॉक्टर विवेक कुमार से निवेदन करें ना, उनसे उनके कमेंट सुनने.
अगर 100 दलित अरबपति बन जाए
तो मैं बहुत खुश हूँ.
खुश
अगर वो मुझे लोन दे देंगे तो और भी खुश हूँ.
डॉक्टर विवेक कुमार, आपने इनकी रियलिटी सुनी. ये बहुत ग्रिम रियलिटी है. यहाँ कोई नहीं सजेस्ट कर रहा कि कैपिटलिज्म आ जाए तो एकदम से माया की जिंदगी बदल जाएगी. बट व्हाई आर यू सो अपोज टू द आर्ग्यूमेंट दैट वेल्थ कैन बी वन एलिमेंट ऑफ एम्पावरमेंट?
नो, आई एम नॉट नेसेसरली एक्चुअली अगेंस्ट द एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ बाय द दलित्स.
ओके,
बट आई एम सेइंग दैट इट इज ब्रिंगिंग रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ द दलित्स. दैट्स माय प्रॉब्लम. Much more revolutionary changes was brought by our constitution, which gave us right to sit here. Otherwise, it would not happen here. So, okay. I think there is a larger picture.
Okay.
And the second thing which I want to say, if you want to annihilate caste, you have to also annihilate Varna. Where is that Varna? I want to become Sar Sangh Chalak. Are you going to give me a space at Sar Sangh Chalak or Kami Koti Kochi Mandir? I will be made head? Not at all. Unless and until the sacred texts of India are questioned, a caste cannot be annihilated.
Okay, okay. Milan ji, 30 seconds and I'm giving the last word to Kalpana and I have to close. We're really out of time. Yeah.
India is a caste-based society. And Chandrabhan ji has said that caste is less. This is the right thing. 1990 के बाद, जिसका मैं उल्लेख करूंगा, ग्लोबलाइजेशन के बाद, नए आर्थिक उदारीकरण के बाद, तो एक कास्ट अभी बिल्कुल कम होते नजर आ रही है. मैं आपको बोलता हूं कि मैं जिस चेंबर को लीड करता हूं, केवल 5000 मेंबर नहीं है हमारे इसमें चेंबर में, देश में 2001-2 में 1 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग थे,
स्मॉल एंड
मीडियम इंडस्ट्री. उसमें 15 लाख शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के उद्यमी थे. ये 90 के बाद है. फिर 2006-07 में 3.5 करोड़ इस देश में सूक्ष्म लघु उद्यम थे, उसमें 50 लाख शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के. और अभी 5.77 करोड़ इस देश में सूक्ष्म लघु उद्योग है, उसमें 15% SC/ST/SME population is 87 lakh people are self-employed and they have given 2% employment. Means SC/ST entrepreneurs has given 1.74 crore people employment.
Okay. Now I know that both sides of this debate are convincing. Now I'm taking 15 second to both of you and Kalpana gets the last word. Boliye sir.
मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने वो जिंदगी देखी है. मैं 72 years का हूँ. मैं हरियाणा को बिलोंग करता हूं. हरियाणा में दलितों की बहुत बुरी हालत थी, लेकिन आज आप देखेंगे हरियाणा के, मैं विलेज से आता हूं, डिस्ट्रिक्ट करनाल से, वहां पर दलित सरपंच है. और ये जो कास्ट वाली जो बात आप कर रहे हैं ना, वो कुछ नहीं हो रहा है. और इसमें ये दलित वाली बात जो आप कह रहे हैं, ये अब वो पोजिशन बहुत चेंज हो.
लेकिन मैं, आपने अभी कहानियां सुनी पवन की, माया की, इतना जल्दी भी कुछ नहीं बदल रहा. लास्ट कमेंट हियर. यस
मैम, आई बिलीव दैट इट्स नॉट अबाउट कैपिटलिज्म, इट्स अबाउट वैल्यू एडिशन. हाउ यू क्रिएट वैल्यू इन द सोसाइटी दैट गिव्स सोसाइटी द राइट टू पुट यू ऑन अ पेडेस्टल, एंड दैट्स व्हाट क्रिएट्स द अल्टीमेट डिफरेंस.
कल्पना जी, आपको मैं आखिर में पूछना चाहूंगी. माया ने बोला कि एक टाइम था, माया ने बोला कि मैं जीना नहीं चाहती थी. आई रीड इन योर स्टोरी दैट देयर वाज अ टाइम जब आपने भी आत्महत्या की कोशिश की. You swallowed poison. क्या हुआ ऐसी जिंदगी इतनी अनबेरेबल क्यों लगी और अब सोचिए कहां से कहां आप पहुंच गई. लास्ट वर्ड टू यू.
उस वक्त के हालात जो थे कुछ ऐसे ही थे कि जीने के लिए मतलब कुछ भी नहीं था मेरे पास में. तो मैं क्यों जीऊं और किस लिए जीऊं? ना तो मेरा एजुकेशन पूरा हुआ, शादी थी वो टूट गई, तो जीने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं. तो इसके लिए मैंने सोचा कि मर जाना ही बेहतर है और इसीलिए मैंने पॉइजन ले लिया था. लेकिन उसी की वजह से जब लोगों ने आके मुझे बोलना शुरू कर दिया कि भाई मर के भी क्या करना था, तुम्हारे बाप का नाम खराब हो जाता था. लोग तो यही कहते हैं कि महादेव की बेटी ने जरूर कुछ किया होगा जिसकी वजह से ये मर गई. मतलब मर के भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं. और फिर मैंने ये सोचा कि अगर लोग मरने के बाद भी ये कहना चाहते हैं कि कुछ किया होगा, तो फिर कुछ करके जिए क्यों नहीं जाए. और फिर मैंने उस वक्त सोच लिया कि चाहे जिस तरह से जितनी भी ताकत लगानी पड़े हमें जीना है और हर हाल में जी के दिखाना है, और उस वक्त से जो हमने मेहनत की और आज उस मेहनत का नतीजा आपके सामने है।
वेल इट्स बीन वेरी वेरी इंस्पायरिंग टू हियर सो मेनी ऑफ यू। द ओपिनियन मे बी डिवाइडेड ऑन what is the route to upliftment, and the stories we've heard today are grim reminders of how difficult it is and how discrimination is still alive, but we are trying to understand this moment of possible change in India. It's a moment of possible change, and Chandrabhan ji, now I have to end. Thank you very much.
Dalit capitalism.
Thank you very much.
Dalit capitalism.
Everything together. Thank you very much. Amazing stories, and all the best to all the people here who have come and shared your stories. Thank you very much. Thank you.